जमानों की उमंग, बाब नंबर 9, अय्यामे कश्मकश। यहूदी बच्चा अवायले उम्री से ही रबियों के मुतालबात में घर जाता था। हर अमल के लिए सख्त तरीन उसूल और जाब्ते लिख दिए गए थे, बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी जज़ियात के लिए भी कानून और जाब्ते मौजूद थे जिन पर उसे अमल करना लाजिम होता था। हैकल के असातिज़ा के ज़ेरे साया नौजवानों को बेशुमार हिदायत दी जाती थीं, जो उन्हें रासिखुल अकदा इसराइल की तरह मानना ज़रूरी था। मगर येसु इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी न लेता था। बचपन से ही उसने खुदमुख्तारी से रबियों की शरीयत पर अमल किया। अहद अतीक के नुस्खजात उसके ज़ेरे मुताला होते। खुदावंद यूं फरमाता है, हर वक्त उसकी ज़बान पर रहता। जब लोगों की ज़हनी कैफियत उसके सामने खुलने लगी, उसने देखा माशरे के मुतालबात और खुदा के मुतालबात में यकसर तजाद है। इंसान खुदा के कलाम से दूर जा रहे थे और अपने नज़रियात को इज्जत देते थे। वो ऐसी रिवायात की पाबंदी करते जिनमें कोई सदाकत न होती। उनकी इबादत रस्म व रिवाज की पाबंदी के गिर्दागिर्द ही घूमती थी, और इलाही सच्चाइयां जो सीखने के लिए थीं, उन्हें इबादत गुजार से छुपा कर रखा जाता था। उसने देखा कि इनकी बेयकीनी की इबादात में उन्हें कोई सुकून हासिल न होता, क्योंकि वो रूह की सच्चाई से नावाकिफ थे। खुदावंद येसु आया ताकि हकीकी इबादत का मतलब सिखाए। वो उन्हें हर गज़ इजाज़त न दे सकता था कि वो खुदा के अहकाम के साथ अपने इंसानी अहकामात भी मिला ले। उसने शुरू के मुअल्लिमों के अहकामात और रसूमात की उस वक्त तक मुखालफत न की जब तक उन्होंने मसीह की सादा आदात पर हमला न किया। अज़ाबाद मसीह ने खुदा का कलाम पेश करके मुअल्लिमों पर जाहिर किया कि जो कुछ वो करता है ऐन खुदा के कलाम और अहकाम के मुताबिक है। मसीह खुदावन ने हमा वक्त निहायत ही शायस्ता अंदाज में बनी आदम को तालीम देने की कोशिश की। वो इस कदर गक्किन और ताबे फरमान था कि शरा के मुअल्लिमों और कौम के बुजुर्गों के ने सोचा कि हम आसानी से उसे अपने ज़ेरे साया कर लेंगे। बस उन्होंने उसे तरगीब दी कि इन रिवायतों और हकायतों को माने जो उन्हें कदीम शरा के मुअल्लिमों से पहुंचे। मगर उसने फरमाया, मैं उन्हें ज़रूर मानता अगर उन अहकामात को खुदा के कलाम से एहतियार हासिल होता। खुदा के मुंह से जो कलाम निकलता वो उसे ज़रूर सुनता, लेकिन वो इंसानों की अपनी बनाई हुई तालीम की पैरोकारी न कर सकता था। मसीह येसु शुरू से लेकर आखिर तक खुदा के कलाम से वाकिफ था, और उसने उन्हें सही अंदाज में सिखाया। शरा के मुअल्लिम बच्चे से हिदायत पाने के बायस शर्मिंदा थे, और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए दावे किया कि इल्हामी नुस्खों की तफसीर करना सिर्फ हमारा हक है। इसलिए येसु को चाहिए कि मुमारी बात माने। बस वो ये कहकर तैश से भर गए कि ये हमारी मुखालिफत करता है। वो जानते थे कि इल्हामी नुस्खों में उनकी हिकायात और रिवायात की कोई वक्त या कदर नहीं। वो जानते थे कि रूहानी इल्म और बसीरत के लिहाज से मसीह येसु उनसे कहीं बेहतर है। वो उससे उसक लिए नाराज थे क्योंकि वो उनकी हिदायत पर अमल ना करता था। चूंकि वो उसे कायल करने से नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने मुकद्दसा मरियम और जनाबे यूसुफ से उसकी शिकायत की कि ये नाफरमानी करता है, जिस पर उन्होंने उसे झड़का। अवायले उम्री से ही मसीह खुदावंद ने अपनी सीरत को संवारना शुरू कर दिया था। वालदेन की इज्जत व तकरीम और ताबेदारी भी उसे खुदा के कलाम से दूर ना ले जा सके। जहां कहीं वो तजाद देखता तो जरूर कहता कि लिखा है। ताम शुरू के मुअल्लिमों ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी, हत्ता कि उसने अपनी जवानी में भी खामोश और सब्र के सख्त तरीन असबाक सीखे। येसु के अपने भाई भी रबियों की तरफदारी करते थे। वो भी इसरार करते थे कि रिवायात को भी ऐसे ही मानना चाहिए जैसे खुदा के कलाम को, बल्कि वो इंसानी अहकाम की खुदा के अहकाम से ज्यादा कदर करते थे। और वो येसु से सख्त नाराज थे जब उसने झूठ और सच में हदफासिल कायम कर दी। खुदा के कलाम की सख्ती से पैरवी करने पर उन्होंने उसे जिद्दी वगैरह कहने से भी दरेग ना किया। फिर भी वो इस बात पर जरूर हैरान हुए कि वो बड़ी हिकमत और इल्म के साथ रब्बियों के सवालात के जवाबात देता है। उन्हें यह भी इल्म था कि उसने किसी शरा के मौलिम से तालीम नहीं पाई, इसके बावजूद वो मौलिमों को हिदायत देता था। वो ये इम्तियाज करने से कासिर रहे कि यसू जिंदगी और इल्म के दरख से सब कुछ हासिल करता है। खुदावंद यसू मसीह सिर्फ मुंतखब लोगों से रब्त और जवाबित का ही ख्वाहिशमंद ना था, इसीलिए उसने फरीसियों के बनाए हुए सख्त अहकामात की पाबंदी ना करके खुद को उनसे अलहदा कर लिया। उसने देखा कि मजहब के चौगर्द उन्होंने बड़ी ऊंची दीवार हायल कर रखी है, इस दीवार को उसने दूर फेंक दिया। जब वो लोगों के साथ मिलता जुलता तो वो उनसे परगज ना पूछता कि तुम्हारा अकीदा है, किस कलीसिया से आपका ताल्लुक है, बल्कि जो कोई भी मदद के लिए उसके पास आया उसने बिला इम्तियाज उसकी मदद की। बजाय इसके कि वो किसी ज्यारतगाह में बैठ जाता, उसने दुखी इंसान की खिदमत की। उसने सिखाया कि कलाम मुकद्दस जिस्म को अजियत देने के बारे नहीं सिखाता, और ये भी कि हकीकी मजहब की इबादत किसी खास खास मौके और वक्त पर नहीं की जाती। उसने इंसानों में मोहब्बत और दिलचस्पी दिखाई और अपना पाकीज़ा नूर उन्हें अता फरमाया, और ये सब कुछ यहूदियों के लिए शर्म का मकाम था। इससे पता चलता था कि मजहब की असास खुदगर्जी नहीं, और उनकी खुदगर्जी फासिद इबादत हकीकी इबादत नहीं है। इसकी वजह से वो यसू के जानी दुश्मन हो गए। खुदावन ने जिसको दुखी देखा उसे अमन और सुकून दिया। उसके पास देने को पैसा तो ना था, फिर भी उसने अपनी जरूरतों पर दूसरों की जरूरतों को मुकद्दम जाना, खुद भूखे रहकर दूसरे को अपना खाना खिलाया। उसके भाइयों ने कि उनकी निस्बत उसकी ज्यादा इज्जत और तकरीम होती है, क्योंकि जो उसमें खूबियां थीं उनमें ना थीं। जब ये गरीबों के साथ सख्ती से कलाम करते या इंसानियत की तजलील करते तो खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से हिम्मत अफजाई का कलाम करता। अगर कोई प्यासा होता तो उसे पानी का ठंडा प्याला पेश करता, और अगर कोई भूखा उसके पास आता तो अपना खाना उसे दे देता। उसके बाद वो उनसे सच्चाई का कलाम करता तो उनके दिलों पर गहरा असर करता जो वो कभी ना भुला सकते। मगर ये सब कुछ उसके भाइयों को नागवार गुजरता। बड़े होने के नाते में वो चाहते थे कि ये उनकी हिदायत पर अमल करे। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद को रब्बियों, बुजुर्गों और आला हुक्काम से भी बढ़तर समझता है। अक्सर उन्होंने उसे धमकाया और हरासा करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा कलाम मुकद्दस का हवाला के कर उनकी परवाह ना करता। यसू तो अपने भाइयों से मोहब्बत रखता था और जहां तक हो सकता उन पर मेहरबानी करता, मगर उनके पास हसद के अलावा उसके लिए कुछ ना था। वो उनके बर्ताव को बिल्कुल समझने से कासिर था। किस्सा कोता। यसू और उसके भाइयों में कोई कदरे मुश्तरक न थी। वो तो इलाही होने के साथ साथ बेबस बच्चा था। तमाम कायनात का बानी होकर भी वो गरीब बना। उसे दुनियावी बर्तरी और बुजुर्गी की बिल्कुल ख्वाहिश न थी। वो जिस हाल में था उस पर काने था। वो हमारी खातिर गरीब बना। दो कर नैथियू 9:8। जिस तरह अय्यूब की मुसीबत के भेद को उसके दोस्त ना समझते थे, उसी तरह मसीह के भाई उसके आने के मकसद से नाआशना थे। मसीह के भाइयों ने उसे इसलिए गलत समझा क्योंकि वो उनकी तरह का ना था। उनका मेयारे जिंदगी मसीह के मेयारे जिंदगी से पस्त था। वो आदमियों की देखा देखी खुदा से दूर चले गए थे, इसलिए खुदा की कुदरत उनमें मौजूद ना थी। जिस कस्म की इबादत वो करते थे उससे सीरत की नश्वोनुमा नहीं हो सकती थी। वो पुदीना और सोनफ और जीरा पर तोदा यकी देते थे, पर शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ जाते थे। मत्ती 23। यसु मसीह का नमूना उनके लिए मुसलसल बायसे अजियत था। दुनिया में जिस एक चीज से उसे नफरत थी वो गुनाह था। हर गलत अमल जो वो देखता उससे उसे सख्त दुख पहुंचता। जाहिरी पाकीजगी दिखाने वालों की मोहब्बत गुनाह के लिए थी। इन दोनों में फर्क साफ जाहिर था, क्योंकि यसु मसीह की जिंदगी बदी और बुराई के साथ मुसलसल जंग थी, इसलिए उसकी अपने घर में और बाहर भी मुखालफत होती। उसकी ईमानदारी और बेलौस खिदमत को मक्कारी का जाल करार दिया गया, जबकि उसके सब्र और मेहरबानी को बुजदिली। रंजो अलम और तलखियां जो इंसान का बखरा है उन्हें यसु मसीह ने चखा। बास तो उसे उसकी पैदाइश का ताना देते थे, उसे इसी सबब से नफरत से देखते और काना फूसी करते। अगर वो बेसब्री से उनको जवाब देता या गलत कदम उठाकर अपने भाइयों को उंगली उठाने का मौका देता तो फिर वो हमारा कामिल नमूना ना हो सकता था। यूं वो नजात की तजवीज को पूरा ना कर सकता, या अगर वो गुनाह करने के बहानों को ही तस्लीम कर लेता तो इब्लीस जीत जाता और दुनिया बर्बाद हो जाती। इसीलिए आजमाने वाले ने उस पर आजमाइशों का जाल फैला दिया ताकि उससे गुनाह करवाए। ताहम हर एक आजमाइश के मुकाबला में उसने पर बार ये कहा, ये लिखा है। उसने अपने भाइयों को उनकी गलतकारी पर शाजू नादिर ही झड़का होगा, मगर उसके पास खुदा का कलाम जो उसने उन्हें सुनाया। जब वो उनके साथ बुराई में शामिल ना होता तो उसे बुजदिल के ताने सुनने पड़ते, फिर भी वो उन्हें कलाम से तंबीह करता। अय्यूब 28:28। बहुत से ऐसे थे जो सुलह, अमन और सलामती पाने के लिए उसके साथ रहने के ख्वाहां थे, जबकि बाज अपने बुरे कामों के सबब उससे दूर रहना चाहते थे। मुबादा वो उन्हें लानतान करे। नौजवान साथी चाहते थे कि वो घी उनकी तरह जिंदगी बसर करे। चूंकि वो हसमक था इसलिए वो उसकी रफाकत से बड़े महजूज होते, मगर चूंकि वो बड़ा मोहतात था इसलिए वो सब्र का दामन छोड़ देते और उसे तंग नजर का ताना देकर उससे जुदा हो जाते। मगर यसु का कहना है, जवान अपनी रविश की तरह पाक रखे,
तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। 9:119-11। बाज़ाकात उससे पूछा जाता कि तू हमसे मुनफरिद है, तो वो कहता, लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। जबूर 1:119-3। और जब उससे पूछा जाता कि वो क्यों नासरत के नौजवानों की शरारतों और छेड़छाड़ में हिस्सा नहीं लेता, तो वो लिखता है, मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आईन में मसरूर रहूंगा, मैंने तेरे कलाम को ना भूलूंगा। जबूर 14:119-16। खुदावन यसु मसीह ने कभी भी अपने हुकूक के लिए जिद ना की। चूंकि वो शिकायत ना करता इसलिए उसका काम मुश्किल बना दिया जाता, फिर भी वो ना तो नाकाम हुआ ना पस्त हिम्मत। उसमें बदला लेने की रूह ना थी। हर बेइज्जती को सब्र से बर्दाश्त करता। उसे बार बार पूछा जाता कि आप क्यों इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त करते हो, यहां तक कि आपके भाई भी दूसरों के साथ मिले हुए हैं, तो वो कहता, लिखा है, ए मेरे बेटे,
मेरी तालीम को फरामोश ना कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अकलमंदी हासिल करेगा। जब से येसु के वालदैन ने उसे हैकल में देखा उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उसकी तर्ज जिंदगी हैरान कुन हो गई है। वो मुतनाज़िया मामलात में दखल अंदाजी ना करता, फिर भी उसका नमूना सबके लिए एक सबक होता। ऐसे मालूम होता था कि जैसे वो खुदा के लिए वक्फ हो चुका है। उसे फितरत और खुदा की कुर्बत से शादमानी मुयस्सर आती। जब भी उसे अपने काम से फुर्सत होती वो खेतों में हरी भरी वादियों में चला जाता ताकि खुदा के साथ रफाकत करे। वो खुदा के साथ पहाड़ों और जंगलों में रहता। सुबह सवेरे उसे किसी वीरान जगह देखा जाता जहां वो ज्ञान ध्यान और दुआ में मसरूफ पाया जाता। इन खामोश और पुरसकून औकात को गुजारने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता ताकि अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा शुरू करे।
मसीह यीशु के दिल में अपने वालदैन के लिए बेहद मोहब्बत और इज्जत पाई जाती थी। मुकद्दसा मरियम ईमान रखती थी कि ये बच्चा जो खुदावन ने मुझे दिया है वही ममसू है जिसका वादा किया गया था। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत न थी कि अपने ईमान का इकरार करती। वो उसके दुखों में पुराबर की शरीक रही। बचपन और जवानी में जो उस पर आफात और आजमाइशें आईं, उनकी वो गवाह थी। उसकी वजह से मुकद्दसा मरियम को भी दुख झेलने पड़े। वो अपने घर की रफाकत पर गौर करती और मां होने के नाते बच्चों की सीरत का पूरी तरह ध्यान रखती। मगर जनाबे यूसुफ के दूसरे बच्चे मुकद्दसा मरियम की मायूसी, परेशानी और दुखों को जानते हुए भी चाहते कि येसु का मैयारे अखलाक उनकी तरह हो। अक्सर मुकद्दसा मरियम येसु को कहती कि ये इसमें क्या हर्ज है अगर वो रब्बियों की हिदायत पर अमल कर ले। मगर हु अपनी उन आदात को बदलने पर तैयार न था जो वो खुदा की सनतकारी पर गौर व खौज कर की पुख्ता करता जाता था। वो दुखी इंसानों बल्कि बेजबान जानवरों को थी सिख और चैन पहुंचाता था। शरा के मुअल्लिम और कौम के बुजुर्ग मुकद्दसा मरियम को काफी रंज पहुंचता। लेकिन जब येसु कलाम मुकद्दस की रोशनी में उसे बताता कि उसका रवैया बिल्कुल खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो वो मुतमईन हो जाती। बाज़ौकात जब येसु की भाई ये ना मानते कि वो खुदा की तरफ से आया है तो मुकद्दसा मरियम डिगमगा जाती। मगर उसके सामने बेशुमार सबूत थे कि वो इलाही सीरत है। उसने देखा कि वो दूसरों की खातिर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, भलाई और नेकी के किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देता। उसकी मौजूदगी घर में पाकीजगी लाती और उसकी जिंदगी से मुआशरा बरकत पाता। वो बेजरर और नजस हुए बगैर बेफकरों, मगरूरों, बदतमीजों, बेईमानों, महसूल लेने वालों, बदहाल मुसरफों, नाराज़ सामरियों, बुतपरस्त सिपाहियों, गिमार देहातियों और मिलीजुली भेड़ में चलता फिरता था। वो हर जा हमदर्दी का कलाम करता, जो बोझ तले दबे लोग थे उनका बोझ हल्का करता। उनको वो सबक सिखाता जो उसने खुद फितरत से सीखते थे, यानी खुदा की मोहब्बत, मेहरबानी और नेकी। उसने सिखाया कि अपने ऊपर इस तरह निगाह करो जैसे खुदावन ने आप सबको कीमती तोड़े देकर पैदा किया है, और अगर उन तोड़ों को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो तुम जरूर अबदी दौलत से सरशार होगे। उसने जिंदगी से हर तरह की फजूलियात को दूर किया और अपने नमूना से सिखाया कि हर लम्हा हमारी अबदियत की साख्त करता है, इसीलिए उसे कीमती खजाना की तरह जमा कर लेना चाहिए। वो किसी भी इंसान के पास से होना ही ना गुजर गया, बल्कि हर रूह को बचने का इलाज बताया। जैसी भी मजलिस में वो गया, उसने मौका महल के मुताबिक उनको सबक दिया। वो जो बहुत गिमार, बेउम्मीद और मायूस थे, उनको भी ऐसने जमानत दी कि वो भी बेजरर, मासूम और बेदाग जिंदगी बसर कर सकते हैं। उसने उनको यकीन दिलाया कि उनकी सीरत भी खुदा के बच्चों और बच्चियों जैसी हो सकती है। वो अक्सर ऐसे लोगों से भी मिला जिन्हें इब्लीस खुदा से दूर ले गया था, और अब उनमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो खुद इब्लीस के चिंगल से रिहाई पाए। जो मायूस हो चुके थे, बीमार या आजमाइश में कर पड़े थे, यसु ने उनसे मेहरो मोहब्बत का कलाम किया। ऐसा कलाम किया जिसकी वहां जरूरत थी, ऐसा कलाम जिसे वो बखूबी समझ सके। फिर वो ऐसु से मिलता जो इब्लीस के साथ साथ दस्ते बदस जंग में मसरूफ थे। उनको उसने ये कहकर हौसला दिया कि हिम्मत न हारे, फतह तुम्हारी ही होगी। जिनकी उसने उन हालात में मदद की से इस बात के कायल हो गए कि यही दुनिया का नजात दहिंदा है। खुदावंद यसु मसीह बदन और रूह दोनों को शिफा देता। वो हर तरह की कमजोरी और बीमारी को दूर करता और हर तरह के दुख पाने वाले को तसल्ली, इत्मीनान और बीमारी से रिहाई देता। उसका तसल्ली बख्श कलाम ऐसे होता जैसे जख्म पर मरहम। कोई भी न कहता कि उससे मौजजा सादिर हुआ है, बल्कि उसकी नेकी और शिफा बख्शने की ताकत का चर्चा होता जो बीमारों और परेशान हाल लोगों तक पहुंचती। इस तरह बचपन से ही वो लोगों की खिदमत करता रहा। इसीलिए जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो बहुत से लोगों ने खुशी से उसकी सुनी। यसु मसीह अपने बचपन, लड़कपन और जवानी में तन्हा चलता फिरता रहा। अपनी पाकीजगी और वफादारी में उसने अकेले अंगूर को रौंदा, और लहगों में से कोई उसके साथ न था। उसने इंसानी निजात के बोझ को अकेले बर्दाश्त किया। वो जानता था कि अगर असूलों में तब्दीली न की गई तो आले आदम मादूम हो जाएगी। ये उसका बड़ा बोझ था जिसे किसी ने भी न सराहा। इस बड़े बोझ को उठाते हुए उसने अपनी जिंदगी को इस तरह ढाला कि वो दुनिया का नूर बने।